नमस्कार भारत, तारीख 30 जुलाई दिन रविवार, मैं हूं विनीत खरे। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ ने कहा,
तो मैं क्यों किसी के कहने पे मैं इस्तीफा दूं, मेरा अपना दिल भी नहीं मानता कि मैं इस्तीफा दूं, तो इस्तीफा नहीं दिया तो आज वैसे निकाल दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A पर बहस, क्या है ये आर्टिकल? गुजरात कांग्रेस में इतनी उठापटक क्यों मची हुई है? और बिहार के नए मंत्रिमंडल पर उठे सवाल।
महेश्वर हजारी और पारसनाथ ये कौन है? ये रामविलास पासवान के एक भाई और एक कौन है? रिश्तेदार है? ये परिवारवाद है कि नहीं है?
साथ में अखबारों की सुर्खियां और खेलों की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल का कहना है कि आतंक विरोधी पुलिस ने विमान उड़ाने की एक साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने सिडनी में कई जगहों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि साजिश में आईडी का इस्तेमाल भी किया गया होगा। सावधानी बरतते हुए ऑस्ट्रेलिया के सभी एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए कदम न उठाने को लेकर चीन की आलोचना की है। ट्रंप का ट्विटर पर यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, अतीत में हमारे मूर्ख नेताओं ने व्यापार के जरिए उन्हें अरबों डॉलर कमाने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने उत्तर कोरिया को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मैं आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता से बाहर हुए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अब्बासी को चुना। नेशनल असेंबली चुनाव जीतने के बाद नवाज शरीफ के भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। नाइजीरिया के चरमपंथी संगठन बोको हराम ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में तेल की खोज करने वाली टीम के वो 3 सदस्य दिख रहे हैं जिनका 2 दिन पहले बोको हराम ने हमले के बाद अपहरण किया था। इस हमले में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। वीडियो में दिख रहा एक सदस्य दबाव में ये कहता नजर आता है कि सरकार जिहादियों के खिलाफ बल का प्रयोग ना करे। तुर्की के इस्तांबुल में परंपरागत कपड़े पहनने की मांग के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मार्च को महिलाओं ने डोंट मेस विद मी माई आउटफिट यानी मेरी पोशाक के साथ उलझो मत नाम दिया। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं मिनी स्कर्ट और कुछ हैंड स्कार्फ के साथ नजर आईं। मेरे साथ खड़ी मेरी इस दोस्त ने हैंड स्कार्फ नहीं पहना हुआ है, लेकिन मैंने पहना है। जैसे मेरी इस दोस्त को कुछ भी पहनने का हक है, ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी मर्जी का पहनने का हक है। कोई भी इनके मिनी स्कर्ट या शॉर्ट पहनने पर गड़बड़ बात ना करे, जैसे कि वो हमारे हैंड स्कार्फ पहनने पर नहीं कर सकते। प्रदर्शन कर रही एक महिला मरवी के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के सुपर बाजार में चाकू से हमला करने वाले हमलावर की पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक हमलावर कट्टरपंथी मुस्लिम है जो 2015 में जर्मनी रहने आया था। पुलिस ने उस जगह भी छानबीन की जहां ये हमलावर रहता था। पुलिस का कहना है कि वहां से हमलावर के किसी चरमपंथी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत और 6 लोगों के घायल होने पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने दुख जताया है। एक तरफ जहां इस बात के संकेत मिलते हैं कि हमलावर कट्टरपंथी मुस्लिम विचारों का था, वहीं दूसरी ओर इस बात के भी संकेत हैं कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। ऐसे में ये साफ नहीं है कि हमलावर ने चाकू से हमला किस वजह से किया। हैम्बर्ग शहर के आंतरिक मामलों के मंत्री एंडी ग्रोट के शब्द। भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात में कांग्रेस ने अपने विधायकों को लालच देकर बहलाने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में एक शिकायत के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को चुनाव आयोग भी पहुंचा। ये सारा घटनाक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब गुजरात में कांग्रेस के कुल 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस ने अपने बाकी विधायकों को राज्य से बाहर बेंगलोर भेज दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार। भारत आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी ने पूर्व पेट्रोलियम मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कल मुस्लिम लीग नवाज के सांसदों की इस्लामाबाद में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नवाज शरीफ ने की। इसमें तय किया गया कि पंजाब सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ना होगा। इसलिए तब तक शाहिद खाकान अब्बासी को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। इस बैठक के बाद नवाज शरीफ ने कहा,
ये जो एहतसाब शुरू हुआ है ये 1972 से शुरू हुआ है, जो हम मेरे खिलाफ हो रहा है, मेरे वालिद मोहतरम के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, तीन नस्लों का, और पिछले सवा साल से ये चल रहा है मामला, एक फैमिली का, और बाकी जो है वो सब जो है वो अमीन और सादिक और अमीन है इस मुल्क के अंदर। मुझे कई लोगों ने कहा कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। हाँ, अगर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा होता कि मैंने कोई बेईमानी की है, मैंने कोई पाकिस्तान का रुपया लूटा है, पैसा लूटा है, लेकिन अगर मेरे ज़मीर पर ऐसा कोई बोझ नहीं है तो मैं क्यों किसी के कहने पे मैं इस्तीफा दूं। मेरा अपना दिल भी नहीं मानता कि मैं इस्तीफा दूं, तो इस्तीफा नहीं दिया तो आज वैसे निकाल दिया गया है।
ये थे नवाज शरीफ जो पत्रकारों से बात कर रहे थे। कौन है शाहिद खाकान अब्बासी, यही सवाल रखा मैंने थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता हारून रशीद के सामने।
देखें, सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो खसूसियत उनमें देखी गई है वो यही है कि वो नवाज शरीफ के काफी करीबी साथी रहे हैं और काफी तवील अरसे से मुस्लिम लीग नवाज जो रूलिंग पार्टी है उसका हिस्सा है। पार्लियामेंट्री उनकी हिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रांग है। वो 6 मरतबा जो नेशनल असेंबली है उसके मेंबर इलेक्ट हुए हैं। पिछले मेरे ख्याल में 20-25 सालों में एक आध इलेक्शन वो हारे हैं, बाकी सारे वो अपने कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रांग हैं। और दूसरा जो मेरे ख्याल में बड़ा फैक्टर है उनको करने का, वो भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ का ख़ानदान बिजनेस में इन्वॉल्व था और वो पाकिस्तान की इस वक्त की बड़ी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनमें से एक के मालिक हैं, एयर ब्लू कंपनी के। इससे पहले वो PIA के भी हेड रह चुके हैं पाकिस्तान में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और बैकिंग है, जिसकी वजह से और जो लॉयल्टी है उनकी नवाज शरीफ की तरफ और जो उनकी सादगी है, मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा इतने एम्बिशियस भी दिखाई नहीं देते हैं, तो शायद इस वजह से नवाज शरीफ ने उन्हें उन पर एतबार किया है। और ये जो 45-50 दिन का इंटरिम पीरियड है उसके लिए उनको चुना है।
तो ये इंटरिम पीरियड की जो बात कर रहे हैं हारून, जैसे कि खबरें हैं कि उसके बाद से शहबाज शरीफ शायद ओहदा संभाल सकते हैं, तो ये इसका ये अरेंजमेंट क्यों है, मतलब क्यों इंटरिम पीरियड ही क्यों, क्यों शहबाज शरीफ सीधे नहीं आ रहे?
वो असल में कौमी असम्बली के रुकन नहीं है और जो भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नेशनल असम्बली का मेंबर हो। तो जो शहबाज शरीफ हैं वो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, प्रोविंशियल असम्बली के, और वहाँ के वज़ीर आला भी हैं। तो उन्हें वहाँ वो अपनी सीट छोड़कर इलेक्शन लड़ना होगा, या तो कोई रिज़र्व सीट पे उनको इलेक्ट करवा लें रूलिंग पार्टी। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से नशिस्त खाली हुई है, सीट खाली हुई है लाहौर में, उस पर वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके लिए एक इलेक्शन कमीशन पूरा प्रोसीजर होता है। उसमें दिन देते हैं, आप फॉर्म लोगों को जमा करवाने होते हैं, फिर कैंपेनिंग का टाइम होता है उसमें, तो उसमें टाइम लगेगा उनके मेंबर इलेक्ट होने पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ही वो मेंबर इलेक्ट होंगे उसके फौरन बाद ही उन्हें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा और प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा।
और इस दौरान नवाज शरीफ उनके जो लीगल इश्यूज हैं वो कैसे, कुछ पता चल पाया कैसे हैंडल करेंगे, क्या लीगली कैसा ही मामला आगे बढ़ेगा?
जी, वो लीगली एक तलवार तो अभी भी इनके सर पर लटक रही है, पूरे शरीफ खानदान पर, वो है ये जो करप्शन के केसेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ खोलने का आदेश दिया है। उसमें हुदैबिया पेपर मिल्स का भी एक केस है, जिसमें कहा जाता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है। तो शरीफ खानदान पे खतरा और वो खतरे की तलवार जो है वो लटकती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई 7.5 माह का वक्त भी दिया है जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसको कि इस पर कोई फैसले पर पहुंचे। तो लगता ये है कि अगले साल अप्रैल मई तक कोई फैसला अगर कोर्ट उससे पहले नहीं करती तो उस वक्त तक ये फैसला आएगा, तो उस वक्त तक शरीफ खानदान पर ये खतरा जो है ये बादल जो है मंडलाते रहेंगे।
आखिरी सवाल आपसे हारून, इस वक्त पाकिस्तान में मूड क्या है, मतलब आम लोगों के लिहाज से, ऑपोजिशन के लिहाज से? उनके लिए एक मौका है क्लॉ बैक करने का, वापस सत्ता में एटलीस्ट सरकार के ऊपर दबाव डालने का?
जी जी बिल्कुल, और वो शायद जो ऑफेंसिव और वो जो एग्रेसिव एटीट्यूड इमरान खान क्रिकेट में अपनाते थे वो शायद उन्होंने अब पॉलिटिक्स में भी अपनाया हुआ है। और आज जो ये ऐलान हुआ है खाकान अब्बासी का और शहबाज शरीफ का, तो उस पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की है और कहा है कि इससे उन्होंने अपने लिए जो सियासी कब्र है वो मजीद गहरी खोद ली है। और वो शायद खाकान अब्बासी का भी कोई शायद करप्शन का केस जो है वो अब दायर करने के लिए अदालत में जाएंगे। और शहबाज शरीफ पर भी उन्होंने एक कोशिश पहले तो की थी कुछ दिन पहले लाहौर में जो नाकाम हुई थी, तो वो अब दोबारा अदालत में जाएंगे उनके खिलाफ भी, जो करप्शन में मुबैन एलिगेशन है उनके खिलाफ उसकी तहकीकात के लिए।
और आम लोगों में मूड, मतलब लोग बस शांति से देख रहे हैं कि ये किधर जा रहा है?
जी ओवरऑल तो मिक्स है, जो लोग सड़कों पे आए हैं वो या तो अपोजिशन पार्टियों के रुकन हैं या मुस्लिम लीग नवाज के हैं जो एहतजाज के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो काफ़ी सारे तमाशे को देख रही है। और ये समझने में ज़रा सी मुश्किल उनको दिक्कत पेश आ रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी वजह को पर मुल्क का वज़ीर आज़म जो सबसे बड़ा होता है उसको क्यों डिस्क्वालीफाई किया, क्या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्या अदालत ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को 6 महीने का वक्त दिया है उस तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि ये सारे केसेस करप्शन के सामने आ जाते तो फिर उस वक्त कोई सज़ा दी जाती ताकि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान में वो इस तरह चलता रहे।
इस्लामाबाद से ये थे हारून रशीद।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले विशेषाधिकारों में किसी तरह का बदलाव किया गया तो राज्य में तिरंगे को थामने वाला कोई नहीं रहेगा। महबूबा मुफ्ती के इस बयान में जिक्र हुआ है आर्टिकल 35A का। क्या है ये आर्टिकल, इसी को समझने के लिए हमारे साथी संदीप सोनी ने श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर से संपर्क किया।
देखिए जो आर्टिकल 35A है, 35A है, ये पार्ट एंड पार्सल है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 वो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जम्मू कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता है। इसमें जो 35A आता है, इस आर्टिकल की तई जो बनता है यहाँ कश्मीर का, वो ये है कि जो भी नागरिक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का है वो स्टेट सब्जेक्ट जम्मू और कश्मीर का तब बनता है अगर वो यहाँ पर पैदा होता है, जम्मू एंड कश्मीर के ऑरिजिन का है। कोई भी दूसरी स्टेट से, यूपी, बिहार, हिमाचल स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है और न कभी यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। ये आर्टिकल 35A J&K स्टेट में परमानेंट रेजिडेंस को गारंटी करता है। इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई भी बंदा ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है न यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन सकता है। तो इसीलिए महबूबा जी कहती हैं कि अगर आप 35A को डिस्कस करोगे, इसको हटाने की कोशिश करोगे, तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको आप डाइल्यूट करोगे और वो अगर डाइल्यूट हो जाता है तो शायद कश्मीर में बहुत बड़ी बगावत शुरू हो जाएगी।
बशीर साहब, ये बताइए कि आर्टिकल 35A ये इसका जिक्र हुआ कैसे, उठा कहाँ से, ये मामला चर्चा कैसे शुरू हुई है?
हुआ ये ऐसे है कि ये आर्टिकल 35A तो जब से J&K स्टेट का एक्सेशन हुआ है इंडिया के साथ, तब से ये आर्टिकल वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जब J&K स्टेट इंडिया का हिस्सा बनी नहीं थी, जब ये महाराजा के कंट्रोल में थी, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर का अपना स्टेट सब्जेक्ट कानून था। यहाँ कोई भी बाहर का नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था और फिर भारत के साथ इंटीग्रेशन के बाद, एक्सेशन के बाद ये कानून चलता गया। अब ये दोबारा बहस में कैसे आ गया? कोई ग्रुप है जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नाम है उसका, ये एक आरएसएस का बैक्ड एक थिंक टैंक ग्रुप है, वो कोर्ट में चले गए हैं, उनने चैलेंज किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनने चैलेंज किया है आर्टिकल 35A को, और वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन चल रहा है। उसी पे जब चर्चा हो रही थी तो मुझे लगता है कि वहीं से महबूबा मुफ्ती ने इस पे कमेंट किया कि अगर 35A के साथ कुछ किया गया तो हालात और बदतर और अबतर हो जाएंगे।
बशीर साहब, ये भी बताइए कि ये जो आर्टिकल, जिस खास तरह के कानूनी प्रावधान की बात हो रही है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम वो क्या सोचती है, किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, अतीत में माजी में किस तरह से रिएक्ट करती रही है?
अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो कुछ हालात खराब हो गए हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो आर्टिकल 370 जिसका एक पार्ट बनता है 35A, जम्मू कश्मीर में लोगों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि 1947 में इंडिया के साथ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया विद सर्टन कंडीशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 370 का जितना भी दमखम था उसको तोड़ दिया गया, उसको एक खोखला एक्ट बना दिया गया। यानी अगर आप देखें आर्टिकल 370 के तहत से जम्मू कश्मीर रियासत के सिर्फ तीन ही मुद्दे सेंटर के पास रहते थे, आपका डिफेंस रहता था, आपका एक्सटर्नल अफेयर्स रहता था और आपका करेंसी रहता था, बाकी सब जो इश्यूज थे वो जेएंड के स्टेट के अपने पास थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आर्टिकल 370 डाइल्यूट हो गया है, अब उसमें बचा है तो सिर्फ 35A। तो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में लोगों को एक खतरा सा लगता है कि अगर 35A हटा दिया गया तो भारत की बाकी स्टेटों से लोग आके यहाँ प्रॉपर्टीज खरीद देंगे और इस तरह जो यहाँ मेजोरिटी स्टेट्स है मुसलमानों का वो शायद माइनॉरिटी में तब्दील हो जाए।
श्रीनगर से ये थे बशीर मंसर। कांग्रेस ने भाजपा पर गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर बहलाने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में एक शिकायत के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग भी पहुंचा। ये सारा घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब गुजरात में कांग्रेस के कुल 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। आखिर कांग्रेस में इतनी उठापटक क्यों मची हुई है, यही समझने के लिए संदीप सोनी ने बात की गांधीनगर में वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्र से।
ट्रेडिशनली 33 साल से कांग्रेस यहाँ पावर में नहीं आई है और अहमद पटेल चूंकि ऑल कांग्रेस कमेटी में के अध्यक्ष सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर माने जाते हैं और गुजरात से हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई उनका से बड़ा डोमिनेंट रहा है और वीक लीडर्स को इनकरेज किया गया। बहरहाल शंकर सिंह बाहर निकल के आए हैं तो उससे जो एक पारी थी वो टूट गई और उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ है बाहर। बीजेपी तो इस ताक में थी ही कि इनको पोच करेंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो अंदर से समझते थे उनमें ऐसा है क्योंकि शंकर सिंह वाघेला ने बहुत वक्त बीजेपी में गुजारा, उनका पॉलिटिकल करियर बीजेपी में, जनसंघ में और आरएसएस के वो रहे हैं। बीजेपी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि अमित शाह की बनाई हुई स्ट्रैटेजी के अहमद पटेल को वो डिफीट करना चाहते हैं राज्यसभा में, वो पॉलिटिकली एक मोरल बूस्टिंग वो होगा कि उन्होंने जो है कांग्रेस के सबसे टॉप के लीडर को हरा के। अब स्थिति जो पैदा हुई उसमें ये कि 51 रह गए हैं, 57 से 6 बाहर हो गए जिन्होंने रिजाइन कर दिया, 51 हो गए। अब अगर 5 और 6 और चले जाते हैं तो 46 वोट चाहिए अहमद पटेल जी को जीतने के लिए, तो अगर 5-6 लोग और चले गए तो उनकी जो राज्यसभा की सीट खतरे में आ जाती है सीधी। अगर अहमद पटेल इस ये इलेक्शन राज्यसभा का हार जाते हैं तो AICC प्रेसिडेंट के टॉप पॉलिटिकल एडवाइजर की डिफीट वन ऑफ द मोस्ट मेजर, जिसे कहेंगे बहुत ही बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए, एक सीरीज ऑफ सेटबैक्स होते हैं, सबसे बड़ा सेटबैक मैं इसे गिनता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी का ये गढ़ माना जाता है, उसी तरह कांग्रेस में अहमद पटेल का भी गढ़ माना जाता है, तो जो एक कॉन्टेस्ट होता है आमने सामने में उसमें ये बहुत करारी हार है कांग्रेस की।
ये थे गांधीनगर से आरके मिश्र। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 और बहुजन समाजवादी पार्टी के 1 विधान परिषद सदस्य के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं। शनिवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लखनऊ आने के साथ ही इस्तीफों का ये सिलसिला शुरू हुआ और माना जा रहा है कि अभी कुछ और विधान परिषद सदस्यों का भी इस्तीफा हो सकता है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अभी लखनऊ पहुंचे भी नहीं थे कि समाजवादी पार्टी के दो विधायकों के इस्तीफे की खबर आ गई। बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह दोनों ही विधान परिषद सदस्य थे और अभी कुछ ही समय पहले समाजवादी पार्टी ने इन दोनों नेताओं को दूसरी बार विधान परिषद में भेजा था। इधर अमित शाह लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे थे, तब तक बहुजन समाज पार्टी के भी एक विधान परिषद सदस्य जयवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिंह ने अपनी सीट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को देने की पेशकश के साथ छोड़ी है, तो बुक्कल नवाब ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के लिए। हालांकि दोनों का कहना था कि अपनी पार्टी में उनका दम घुट रहा था। यशवंत सिंह कहते हैं,
उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया है, घटाया नहीं है, और वह चीन और पाकिस्तान के सामने घुटना नहीं टेके हैं बल्कि उनकी घेरेबंदी कर रहे हैं।
वहीं बुक्कल नवाब भी मोदी और योगी की प्रशंसा करने से नहीं चूके। उनका कहना था कि अभी बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन बुलाएंगे तो हम ना नहीं करेंगे।
एक साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। बीजेपी अच्छे काम कर रही है, मोदी जी ने भी अच्छा एक सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा दिया है।
दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शनिवार से ही 3 दिन के दौरे पर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत कुल 5 मंत्री ऐसे हैं जो अभी राज्य के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इन लोगों को 19 सितंबर से पहले किसी भी सदन की सदस्यता लेनी है। बताया ये जा रहा है कि अमित शाह के दौरे के प्रमुख एजेंडों में से एक इस पर फैसला करना भी था। अभी तक बीजेपी के किसी विधायक ने इन लोगों के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश भले ही न की हो, लेकिन अमित शाह के लखनऊ पहुंचते ही विपक्षी दलों के विधायकों में जैसे इसके लिए होड़ सी लग गई हो। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्षी पार्टियों के विधान परिषद सदस्य ही इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, विधानसभा सदस्य क्यों नहीं? वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
एक तो पूरे देश में ये मैसेज दिया, उत्तर प्रदेश में मैसेज कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, और दूसरा ये संदेश दे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सर्वाधिक आकर्षण का राजनीतिक दल है।
हालांकि इन विधायकों को अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इनके पार्टी छोड़ने को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव और बीएसपी नेता मायावती दोनों ने ही बीजेपी पर निशाना साधा है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और यूपी के बाद बिहार। बिहार में भाजपा के साथ नई सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। क्या फर्क है पुराने और नए मंत्रिमंडल में, बता रहे हैं पटना से नीरज सहाय।
शनिवार को जदयू और भाजपा की नई सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इसमें 27 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें 14 जदयू, 12 भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के एक हैं। महागठबंधन सरकार में जहां 6 यादव और 4 अल्पसंख्यक मंत्री थे, वह संख्या घटकर 3 और 1 पर सिमट गई है। मंत्री परिषद में महिला नेतृत्व 2 से घटकर 1 हो गई है। वहीं सवर्ण समाज से आने वाले मंत्रियों की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। भाजपा के 3 सहयोगी दलों हम, रालोसपा और लोजपा में से सिर्फ लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया है। फिलहाल पशुपति पारस किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। समझा जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से 1 सदस्य वाली पार्टी हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंत्री परिषद में जगह न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में कहा कि
थोड़ा सा भी अगर मालूम हो गया होता, लेकिन जैसा कि पता चला हम पूछा कि भाई क्यों नहीं बताया गया, तो हुआ कि शायद 8 बजे के आसपास में एक डिसीजन हुआ कि आज ही करा लेना है, और हम 8 बजे प्लेन पर बैठ चुके थे और हम दिल्ली आए तो मालूम हुआ कि आज 5 बजे हो रहा।
नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल हो जाने के बाद भी सबसे बड़े दल राजद ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। पार्टी के प्रदेश सचिव गुलाम रब्बानी के अनुसार,
जदयू के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि लालू यादव परिवाद बात कराता, आप बताएं जो आज मंत्रिमंडल में 2 लोग ओथ लिए, महेश्वर हजारी और पारसनाथ, ये कौन है? ये रामविलास पासवान के एक भाई और एक कौन है, रिश्तेदार है? ये परिवादवाद है कि नहीं है?
अब नई सरकार की परीक्षा इससे भी होगी कि मंत्री परिषद के मंत्री कितनी तत्परता और पारदर्शिता से काम करते हैं। नीरज सहाय, BBC पटना।
और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। मानसी दास स्टूडियो में मेरे सामने।
बिहार यूपी ही आज के अखबारों की सुर्खियां हैं और साथ में पाकिस्तान पर भी खबर छपी है सभी अखबारों में। बिहार के नए मुख्यमंत्री, अब उन्हें नया ही कहना ठीक रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है जिसमें बीजेपी को बड़ी भूमिका मिली है, ये खबर छापी है हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर। अखबार लिखता है कि जहां जदयू के 14 विधायकों को नीतीश की टीम में जगह मिली है, बीजेपी के 12 विधायकों को इसमें शामिल किया गया है। एक और खबर आपको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, खबर है खाकी में चोरी का। गहनों के कारोबारी के घर में 5 लोग पहुंचे जिन्होंने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और कहा कि वो छापा मारने आए हैं। इसके बाद दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर घर में चोरी हुए और ये जो मामला है ये दोपहर के 1:30 बजे का है। इस्लाम के एक महत्वपूर्ण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। अग्गी अखबार छापी है दी हिंदू, माफ कीजिएगा, ये खबर छापी है अखबार दी हिंदू ने। अखबार का कहना है कि छात्र फोन और एसएमएस करने के लिए साधारण फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्मार्टफोन का नहीं। और ये जो बैन लगा है ये क्लासरूम और हॉस्टल में लगाया गया है। इधर भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ने केंद्र सरकार की आलोचना की है और ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है। उनका कहना है कि आप विचार को तो मार सकते हैं, आप विचार को लेकिन कैद नहीं कर सकते हैं। और एक और खबर है हरियाणा से, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। हरियाणा में गाय पालने वालों के पास अगर घर में गायों को रखने की पर्याप्त जगह नहीं है तो उन्हें गायों को हॉस्टल में भेजना चाहिए। अखबार के अनुसार हरियाणा सरकार ने एक संस्था बनाई थी 2013 में, हरियाणा गौ सेवा आयोग। आयोग अब इस संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजने वाली है।
शुक्रिया मानसी। और खेल समाचार में आज जिक्र भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच का जिसमें भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की है। पेश कर रहे हैं रिपोर्ट आदेश कुमार गुप्त।
Straight up, should be taken. Who wants it? Looks like Mohammed Shami. Test match win 17th against Sri Lanka, the 7th in Sri Lanka.
भारतीय क्रिकेट टीम ने कल मेजबान श्रीलंका को गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में खेल के चौथे ही दिन 304 रन से करारी मात दी। भारत ने अपनी पहली पारी में 600 रन बनाए थे जिसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 291 रन पर सिमट गई। भारत चाहता तो श्रीलंका से 309 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद उसे फॉलो ऑन भी दे सकता था, मगर कप्तान विराट कोहली ने अपने गेंदबाजों को थोड़ा विश्राम दिया और भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 240 रन के स्कोर पर अपनी पारी समाप्त घोषित की और कल श्रीलंका के सामने जीत के लिए 550 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन श्रीलंका की दूसरी पारी 245 रन पर सिमट गई। श्रीलंका की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने 97 और निरोशन डिक्वेला ने 67 रन बनाए। थोड़ा योगदान कुशल मेंडिस ने 36 रन बनाकर दिया लेकिन बाकी बल्लेबाज आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की घूमती गेंदों का सामना नहीं कर सके। आर अश्विन ने 65 रन देकर 3 और रविंद्र जडेजा ने 71 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने कल अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 189 रन से आगे शुरू की और कप्तान विराट कोहली ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया वैसे ही उन्होंने 3 विकेट पर 240 रन के स्कोर पर पारी समाप्ति का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 17वां शतक जमाते हुए नाबाद 103 रन बनाए। उनके साथ अजिंक्य रहाणे भी 23 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में 190 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन मैन ऑफ द मैच रहे। उनके प्रदर्शन को लेकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर मदनलाल कहते हैं,
शिखर धवन की खास बात यह है कि उन्होंने अपना गेम को ऑल्टर नहीं किया। प्रेशर में थे पर ऑल्टर नहीं किया उन्होंने, उन्होंने वैसा ही गेम खेला जैसे वो जानते हैं। इसी वजह से मैं समझता कि उन्होंने 190 बनाए हैं और बेहतरीन उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है जो कि वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। और देखिए अपना अच्छा हिस्सा वो अपना स्थान जो है टेस्ट क्रिकेट में पक्का करता चले जा रहे हैं।
दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 3 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल का कहना है कि आतंक विरोधी पुलिस ने विमान उड़ाने की एक साजिश को नाकाम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए कदम न उठाने को लेकर चीन की आलोचना की है। शाहिद अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। तुर्की के परंपरागत कपड़े पहनने की मांग के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात में कांग्रेस के अपने विधायकों को लालच देने का लालच देकर बहलाने का आरोप लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया विकास। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दी अनुमति। स्टूडियो संभालता शाकिर आलम ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। दिन भर कार्यक्रम के साथ।